पूरा प्रतिबिंब पानी के अंदर नजर आता है, तालाब में नजर आता है, तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल लेता है, तो क्या स्वयं परमेश्वर नाम रूप आकार बिना होगा? उसका भी नाम रूप आकार है। जैसे ईश्वर को महिमा में निर्गुण भी कहते हैं, निर्गुण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना है। अब परमात्मा तो गुणों में अनंत है, फिर निर्गुण किस लिए कहा गया? निर्गुण माना एक विशेषण के रूप में कि जिसके गुण मनुष्य जैसे नहीं है, उस अर्थ में निर्गुण कहा। निराकार का मतलब शाब्दिक रूप में नहीं लेकिन विशेषण के रूप में कि जिसकी आकृति मनुष्य सदृश नहीं है, उस अर्थ में कहा निराकार। लेकिन उसकी अपनी आकृति तो है, वो कौन सी? तो जैसे एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। अगर आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, चैतन्य ज्योति है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी आत्मा है, परमात्मा। परम माना अपने पोजीशन में परम है, रूप में बड़ा है, ऐसा नहीं। जैसे आप दुनिया में किसी को कोई कह देता है कि अरे आजकल तो तू बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी माना साइज में कोई बड़ा थोड़ी हो गया, पोजीशन में बड़ा हो गया। ऐसे ईश्वर को भी परम आत्मा जब कहते हैं तो साइज में नहीं लेकिन अपने कर्तव्य में, अपने स्टेटस में वो तो परम है, श्रेष्ठ है। लेकिन उसका स्वरूप आत्मा जैसा ही एक प्रकाश पुंज है, लेकिन सदा पवित्र है। जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई, जो ज्योति का आकार है। ज्योतिर्लिंग मतलब, लिंग का मतलब है आकृति। जैसे स्त्री लिंग पुल्लिंग कहते हैं, यानी स्त्री का आकार पुरुष का आकार, इसी तरह ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति का आकार है। ज्योति की पूजा कैसे कर सके, इसीलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित करते और उसको नाम दे दिया सदाशिव। सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाला है। शिव मतलब परम पवित्र, एवर प्योर। शिव माना शांति। मनुष्य के नाम जो है गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। आज किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना? किसी का नाम होगा हसमुख बहन, लेकिन वो हंसते ही नहीं होंगे। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर। आजकल तो मनुष्य आत्माओं ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, है ना, शंकर भाई, देवी देवताओं का नाम भी अपने ऊपर लगा दिया, महालक्ष्मी बहन, और लक्ष्मी बहन के जीवन में धन ही नहीं होगा, है नाम लक्ष्मी हाँ, लेकिन धन की कमी है। तो देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, लेकिन क्वालिटीज किसी की नहीं है, वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो कई लोगों ने डबल नाम लगा दिए, राधेश्याम, सीताराम, है ना, डबल डबल नाम लगा दिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान बन गए, महान तीर्थ स्थान। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में मिलेगा उसकी पूजा करते हुए, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में मिलेगा, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में मिलेगा। भारत से बाहर नेपाल चले जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में मिलेगा। सभी का नाथ और ईश्वर है। देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में चले जाएंगे श्री राम से कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवी देवताओं का कोई आगे पीछे होगा, लेकिन परमात्मा का मंदिर अवश्य मिलेगा, महादेव का मंदिर जरूर होगा। इसीलिए उनको कहा गया देवों का भी देव महादेव, कि जिसकी पूजा स्वयं देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की। अब अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी, शिव से, शिव भक्त था। इसीलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है, जिसने प्यार से याद किया शक्ति दे दी, चाहे वो राम हो या रावण हो, कोई पार्शियलिटी नहीं की, प्यार से जिसने भजा भोलेनाथ है, दे दिया। और इसीलिए श्री राम जानते थे कि उसके पास महादेव की शक्ति है, और महादेव की शक्ति के सामने मुकाबला करना, अपनी शक्ति से मैं हार जाऊंगा। तभी उसने रामेश्वरम पहुंचकर सबसे पहले शिव की शक्ति प्राप्त की, और उसके बाद हर हर महादेव करके युद्ध शुरू किया। ठीक इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज भी वहां स्थानेश्वर का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता कि यह स्थानेश्वर का मंदिर स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था शिव की पूजा के लिए। अब ब्रह्मा जी जो अगर भगवान हो तो उन्होंने शिव की पूजा करने की क्या जरूरत थी। और महाभारत के समय स्वयं श्री कृष्ण ने पूजा की स्थानेश्वर की, पांडवों से भी कराई, और उसके बाद हर हर महादेव करके युद्ध शुरू हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की, क्यों कराई, खुद की पूजा क्यों नहीं कराई? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त करना था, जो महादेव की शक्ति के बिना संभव नहीं। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते जब संसार में असुर बढ़ गए तो शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया, और इसीलिए उनको कहते शिव शक्ति असुर संहारने। शिव शक्ति की आरती जी कोई गाए, नवरात्र में यही आरती गाते हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसको कहा महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं अज्ञानता के कारण, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता तो महाविनाश होता है, एक विनाशकारी एक कल्याणकारी, फिर एक कैसे हुआ? जब भी कोई मंत्र देते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, कभी ओम नमः शंकराय का मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय जपते हैं ना, कभी ओम नमः शंकराय जपा? शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, कभी शंकर रात्रि सेलिब्रेट किया? कहते हैं कभी शंकर रात्रि। शंकर को भी हमेशा ध्यान अवस्था में दिखाते, अगर वही परमात्मा है, वही महादेव है, तो उसको किसका ध्यान करने की जरूरत पड़ी? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने कई सालों तक ध्यान किया। कैलाश पर्वत आज भी जो कैलाश मानसरोवर होकर आते हैं, वो यही कहते कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया होगा? शिव का ध्यान किया। क्यों ध्यान किया? उन्हें क्या जरूरत पड़ी ध्यान करने की? क्योंकि उनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके, इसलिए इतने सालों बैठकर ध्यान किया। आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? अमरनाथ का महत्व क्या है? वहां के पंडित लोग यही बताते हैं कि अमरनाथ पे शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो दो कबूतर बताते हैं। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की अमर कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक थे या अलग? तभी तो कथा सुनाई, अलग होंगे तभी तो कथा सुनाई। भावार्थ ये कि अज्ञानता के कारण हमने दोनों को एक समझ लिया। ये तो हुई भारत वालों की बात। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। हर रोज कुछ न कुछ देते थे। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, अगर उस सोर्स को मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी न पड़े। तो सोचा जरूर सोर्स से सुबह सुबह प्राप्त करते होंगे, आज तो जरूर देखना है। तो एक दिन भिखारी सुबह 6 बजे में पहुंच गया और द्वारपाल को जाकर के पूछा कि हे द्वारपाल, तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त राजा कहां होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा, हम राजा तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। सोचा जरूर वहां कोई सोर्स होगा, सुबह सुबह प्राप्त करते होंगे, सारा दिन लोगों को बांटते हैं। कहा मैं वहां जा सकता हूं? द्वारपाल ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन पीछे जाके बैठना, आगे नहीं। कहा मेरे को आगे कोई काम भी नहीं, मैं पीछे ही बैठूंगा। भिखारी पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली सदा भरतू रखना, ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ये बात सुनी भिखारी उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी? अरे आज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, हम भी भगवान से डायरेक्ट न मांगे, वो हमारी झोली भी फुल भरेगा। वहां से चले, भिखारी सोचने लगा कि ये राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचारा ये हनुमान जी की झोली किसने भरी, तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे, इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने राजा को दिया, राजा ने हमें दिया। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी, कहा उन्होंने तो महादेव की पूजा की थी। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी को भी इतने सारे को देना पड़ता है, एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता है, एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गया ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं है, हाँ वाया वाया में तो नहीं है, क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ ये तो ही भारत वालों की बात, भारत से बाहर जाओ मुसलमान धर्म में जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु मक्का जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, और ये काबा के पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 360 अल्लाह की मूर्तियां थी, देवी देवताओं की मूर्तियां थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने यही क्रांति फैलाई, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, वो लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब को वहां से भगा दिया, मदीना भेज दिया, लेकिन ये क्रांति जारी रही, अल्लाह एक है। धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया, और जैसे ही बड़ी तादाद में हो गए लोग कि अल्लाह एक है, फिर से मक्का के ऊपर चढ़ाई हुई, काफी खून खराबा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और ऊपर से ये पत्थर गिरा था, इसीलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर कहते हैं। उसी समय वो 360 देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी मुसलमान धर्म में, उन सबको नष्ट कर दिया गया इस्लाम धर्म में, और उसी समय ये काबा के पवित्र पत्थर की स्थापना की गई, और तब से लेकर के यही मान्यता रही कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसीलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती, वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, और अंत में अपनी बंदगी में यही कहते हैं, हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा गया है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है, तब तक हज कबूल नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर का मतलब तेज, ज्योति का मतलब तेज, बात एक ही है या अलग है, एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता, मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय अखंड ज्योति का साक्षात्कार किया, और उस ज्योति को देखकर मोसेस ने कहा यहोवा, द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी प्रार्थना में यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये प्रभु किसको कहा? आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ जहां सबसे बड़ा चर्च है उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का वो स्वरूप मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उनकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी धर्म में नहीं किया गया, इतनी स्पष्ट महिमा गाई है, रियलाइजेशन के आधार पर गाई है। एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम काल, बहुत सुंदर तरीके से गाई, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं कहा। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी, जिसको उन्होंने कहा वाहे गुरु, परमात्मा के लिए कहा गया है। और आगे जाए महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए गए, किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? आज भी जब जैनी लोग दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है, वो शिव कौन है? महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया, तो कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र, उसी से ही वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, उसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, और उसका नाम है चिंकुन सिकी। चिंकुन सिकी माना जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमें शांति प्राप्त होती है, इसीलिए उनके सामने बैठकर वो मेडिटेशन करते हैं और मेंटल रिलैक्सेशन प्राप्त करते हैं, शांति मिलती है। और आगे जाए पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। अखंड ज्योत जो निरंतर जलती रहती है, वहां किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, परमात्मा का ही ये दिव्य स्वरूप। तो सर्व धर्म मान्य, दैट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड, कौन है? एक ही है, निराकार ज्योति स्वरूप, नूर प्रकाश लाइट, अखंड ज्योति, सिद्ध शिलापति, चिंकुन सिकी, जो भी को है वो एक ही, किसी ने उसको मालिक कह दिया। सर्व धर्म मान्य, जिसको सभी देवी देवताओं ने भी याद किया, सर्व धर्म मान्य, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके प्रति सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना सेल्फ क्रिएटेड, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, जो स्वयं सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है, सुप्रीम अथॉरिटी, और जो सभी चक्र से पर है। संसार के अनेक चक्र है, जन्म और मृत्यु, देह और देह के संबंध, कर्म और कर्म का फल, पाप और पुण्य, सुख और दुख, परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है। इसीलिए गीता में चौथे अध्याय में जब भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं, काल मुझे खा नहीं सकता है, मैं कालों का काल, हे अर्जुन मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अव्यक्त हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त, दुख हरता सुख करता हूं, दुख सुख के चक्र में नहीं आता है, तो जो सभी चक्र से ऊपर है लेकिन पर होते हुए भी सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, तीन लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और जिसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा गया। उस तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले त्रिनेत्री है, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको त्रिनेत्री कहा जाता है। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ाया जाता है, जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। दुनिया में भी कहते गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो ये तीनों मूर्तियों के फादर है, इसलिए उसको कहा गॉड फादर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम का, सत्यम शिवम सुंदरम, ये उसकी महिमा गाए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न जरूर मन के अंदर आ सकता है कि जो ब्रह्मा का चित्र हमने यहाँ देखा और भक्ति में जो ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं वो तो अलग है, फिर इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? ब्रह्मा का चित्र जो हमने भक्ति में देखा कमल आसन पर, ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, देवी देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं होती है, मनुष्य को होती है, देवताओं को नहीं होती है ना। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखाए और सहस्त्र भुजाधारी दिखाया। आज की दुनिया में अगर देखो कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है लिटरली, या ये किसी बात का प्रतीक है? क्या कहता है आपका विवेक? किसी बात का प्रतीक है, कमल आसन पर बिठाना ये किसी बात की ओर इशारा कर रहा है। आज की दुनिया में कोई दो मुंह वाला बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा है। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखा है, उसको तो एबनॉर्मल नहीं कहा? यानी ये भी किसी बात का प्रतीक हो सकता है। सहस्त्र भुजाधारी, ये भी किसी बात का प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता कि जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, उस समय ये संसार पर कौन सा समय चल रहा था? तो उस समय मनुष्य सृष्टि चल रही थी। मनुष्य सृष्टि का प्रतीक कि उस समय ये संसार में मनुष्य लोग रहते थे और बहुत बुरा हाल हो गया, तब भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया और इसलिए ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, माना एक साधारण मनुष्य को निमित्त बनाया। और सबसे पहले भगवान ने क्या किया, उसके जीवन को प्यूरिफाई किया, इसलिए कमल आसन प्यूरिफिकेशन, कि उस समय संसार कीचड़ जैसा था लेकिन उस कीचड़ जैसे संसार में कमल को खिलाया, सबसे पहले उसके जीवन को प्यूरिफाई किया। और उसके बाद क्या किया, तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, वेद पुराण उपनिषद सब दिखाए, कि एक एक शास्त्र बैठकर पढ़कर के नहीं सुनाया, सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? सारे संसार की आत्माओं को। सारा संसार कैसे दिखाए? इसलिए चार दिशा में चार मुख, कि वो ज्ञान जो फैला संसार के चारों दिशा में फैला, और फैला कैसे, तो सहस्त्र भुजा द्वारा। आज कोई हमारा मददगार होता है तो क्या कहते हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मददगार है। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो नई संसार की रचना की, उसमें हजारों आत्माएं जुड़ गए, मददगार बन गए, हर एक ने अपनी दुनिया को परिवर्तन करके संसार का परिवर्तन। When you change, the world changes. हर एक व्यक्ति का परिवर्तन, उससे संसार का परिवर्तन किया। तो वो ब्रह्मा एक सिंबॉलिक है, जो कार्य ईश्वर का अभी चल रहा है। हम एक ही सवाल आपसे पूछते हैं, क्या भगवान के इस नई दुनिया के रचना के कार्य में मददगार बनना है या नहीं बनना है? इसीलिए कहा जाता है, आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइदर यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, आइदर यू आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बनना चाहते हैं? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्रह्मा की भुजा बनने में एक आनंद है, भुजा बनके तो देखो। परमात्मा के इस दिव्य कार्य में अगर मददगार बन गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में मनुष्य जीवन में और कोई नहीं है, ईश्वर का मददगार बन गया। कई लोग कहते हैं, आप लोगों को ये ज्ञान कहां से आया? सोचो, देने वाला कौन होगा? हर एक व्यक्ति अपने धर्म के बारे में एडवोकेट करता है दुनिया में, सारे धर्म को मिलाने की बातें नहीं करता है, कि ईश्वर ही कर सकता है, कि मैं सर्व धर्म मान्य हूं, एक नई विचारधारा, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। आज दिन तक जो बातें सुनते आए, शिव और शंकर एक नहीं है, ये सारी कॉन्ट्राडिक्शंस को स्पष्ट करना ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। कई लोग कहते हैं, क्या प्रूफ है कि भगवान ने आपको ये ज्ञान सुनाया? प्रूफ है ज्ञान, जो ज्ञान दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दे सका। हर व्यक्ति अपने धर्मों को एडवोकेट करता रहा, सारे धर्मों को मिलाने की बातें नहीं कर सका। ये सारे धर्मों को मिलाने की बातें जो करता, वो ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है, ये प्रमाण है। और उसके बाद, ये जानने के बाद, उसका मददगार बनना, उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। और जानने के बाद भी अगर मददगार नहीं बने, तो क्या कहेंगे? तकदीर, तकदीर ही कहेंगे। वही परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिट, डायमेंशनलेस, मेजरमेंट लेस, इन्फिनिट। बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं होती है, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं होता है। परमात्मा भी रूप में बिंदु, पर गुणों में अनंत है, सिंधु है। विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है एटम, और एटम को जितनी बार फ्यूज करो, उतनी बार वो शक्तिशाली बन जाता है। परमात्मा ने गीता के 8वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म हूं। और इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे कल आत्मा का संपूर्ण परिचय देखा, 5 बातें देखी, आज ईश्वर के बारे में भी ये 5 बातों को देखा। 5 बातें कौन सी? नाम क्या है, रूप, फोटो चाहिए आइडेंटिटी के लिए, क्वालिफिकेशन, एड्रेस और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है, तो ईश्वर के परिचय में भी ये पांच बातों को देखा, जिसका नाम कहा सदा शिव, जेहोवा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, प्रभु, मालिक, सिद्ध, शिलापति, चिंकोन शेकी, जो भी कहो, स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार नूर प्रकाश लाइट ज्योति, जो भी कहो, अखंड ज्योति। उसके क्वालिफिकेशन व पांच बातें सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस है पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, जिसको कहा निर्वाण धाम, रूहानी दुनिया का निवासी है। और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करना, खुद करता नहीं है कराना, इसलिए शंकर द्वारा महान परिवर्तन, ब्रह्मा द्वारा नए विश्व की सर्जना और विष्णु द्वारा उसकी पालना कराने वाला कौन है, वो ईश्वर। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है करण करावन हार, खुद करता नहीं है कराने वाला है। ये संसार के लेवल पर उसका कारोबार चलता है, व्यक्तिगत लेवल पर नहीं, संसार के लेवल पर चलता है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अभी हम सभी थोड़ी देर, अभी तो आपका बच्चा अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ईश्वर कौन, तो उसका जवाब दे सकते नहीं दे सकते, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में पूछ सकते हैं मुझे। दूसरी बात कि अभी हम सभी थोड़ी देर, जब रूप स्पष्ट हो गया कि वो निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो उस स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। अब तक कंफ्यूज हो रहे थे, मन भटकता था, ये शिकायत थी, क्योंकि मालूम ही नहीं था सत्य क्या है, कहाँ एकाग्र करना है। अब मालूम पड़ा तो एकाग्र तो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन मांगना नहीं है ईश्वर से, हे प्रभु शांति दे दो, सुख दे दो, प्रेम दे दो, नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। बाहर धूप में खड़े रहो, सूर्य से कभी मांगते हैं कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे? अरे खड़े रहो, रोम रोम के अंदर गर्माइश भर जाएगी। नदी के किनारे पर खड़े रह करके नदी से मांगते नहीं कि तेरी शीतल हवा मुझे दे? अब खड़े रहो, मिलेगी, रोम रोम में शीतलता भर जाएगी। ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं, अपने ध्यान को एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो अंदर में, अपने अंतर के द्वार खुले रखे और उस प्रवाह को, सर्वशक्ति के प्रवाह को आने दो, बैटरी चार्ज होने लगेगी। ठीक है, जैसा चिंतन वैसा जीवन।